हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा ने अमन से कहा था, मुझे कुछ जरूरी काम से 7 दिनों के लिए देश से बाहर जाना होगा। तब तक मैं लौट कर ना आऊं। मैं चाहता हूं कि तुम अपना पूरी तरह से ख्याल रखना और हो सके तो पूरा का पूरा समय माँ के साथ ही रहना। 7 दिनों के लिए तुम ऑफिस मत जाना, क्योंकि ऑफिस में तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। और हाँ, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं आज ऑफिस का सारा काम विक्रांत को हैंडओवर करके पूरे 7 दिनों के लिए एक जरूरी मीटिंग में चला जाऊंगा। सोचो, एक काम करो, तुम आज मेरे साथ चलो और तुम भी 7 दिन की छुट्टी ले लेना। तारा अमन की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से अमन को क्या हुआ है और वो अचानक से बाहर जाने की बात क्यों कर रहा है। लेकिन तभी तारा सोचने लगी कि अगर अमन 7 दिनों के लिए बाहर जाने की बात कर रहा है, तो इन 7 दिनों में वो बगीचे में जाएगी और दादा जिन महाराज से बात करके करिश्मा जी के पति का पता लगाएगी। आखिर वो किस तरह से गायब हुए थे और उन्हें किसने गायब किया था। साथ ही साथ उसे राक्षस के अंश का भी पता लगाएगी कि आखिरकार वो राक्षस का अंश किसके अंदर है। क्योंकि जब तक तारा को ये नहीं पता चलेगा कि राक्षस का अंश किसके अंदर है, वो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी। जब दुश्मन उसने देखा ही ना हो, तो वो किस तरह से उसका मुकाबला कर सकती थी। एक तरफ तारा को अमन से दूर होने की वजह से उसके दिल में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो दिमाग से भी सोच रही थी। वो सोच रही थी कि अगर इन दिनों अमन उसके साथ नहीं रहेगा, तो वो आसानी से करिश्मा जी के पति का पता लगा लेगी। साथ ही साथ उस अंश का भी पता लगा लेगी कि वो किसके साथ है, किसके अंदर है। इस वक्त तारा के दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। दिल तो अमन के बिना रहने का नहीं कर रहा था, लेकिन दिमाग उसे अमन के बिना रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि अमन के बिना रहकर ही वो ये दोनों काम कर सकती थी। तारा को इस तरह से सोचता हुआ देखकर अमन उसके पास आया और उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है माँ तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। और रही बात मेरी, तो मैं बहुत जल्द वापस लौटाऊंगा, मेरा इंतजार करना। और हाँ, कहीं भी बिना बताए तुम नहीं जाओगी और 24 घंटे माँ के साथ ही रहोगी। तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा, अमन ने तारा की फिक्र करते हुए कहा। तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो अमन से झूठा वादा कर ले, क्योंकि वो इस तरह का वादा नहीं कर सकती थी। क्योंकि तारा को तो बगीचे में जाना ही था, तो वो इस तरह का झूठा वादा अमन को नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने बात पलटने के लिए अमन से बोला, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं और अचानक से ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई 7 दिनों के लिए जो आपको विदेश जाना पड़ रहा है? तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ विदेश। तारा की बात सुनकर अब अमन परेशान हो गया था, क्योंकि तारा उसके साथ चलने के लिए कह रही थी, जबकि अमन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो तारा को अपने साथ बगीचे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि अमन को जो तपस्या करनी थी वो बगीचे में बैठकर करनी थी और वहीं उसे सारी शक्तियां मिलने वाली थीं, क्योंकि उसके दादाजी महाराज भी वहीं पर समाधि लिए हुए थे। अमन ने तारा को प्यार से समझाते हुए कहा, अगर तुम माँ बनने वाली नहीं होती तो मैं तुम्हें इस सफ़र पर ज़रूर ले जाता, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में सफ़र करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें मजबूरन छोड़कर जा रहा हूँ, वरना मेरा खुद तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा। अमन के दिल और दिमाग में भी खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, क्योंकि उसका दिल तारा को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, मजबूरन अब उसे जाना ही था, और वो भी तारा की भलाई के लिए ही जाना चाहता था, क्योंकि जब तक वो और शक्ति हासिल नहीं करेगा, वो उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बात करिश्मा जी और अमन दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि राजा विक्रम सिंह कितना ज्यादा शक्तिशाली है, और ऊपर से उसने अपनी माँ को भी छुड़वा लिया है, और उसकी माँ की काली शक्तियाँ भी इतनी अधिक हैं कि उनका भी कोई आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसीलिए मजबूरन अमन को तारा से दूर जाना ही था। कुछ सोचते हुए तारा ने अपना मुंह उदास करके अमन की ओर देखते हुए कहा, अभी के लिए हम ऑफिस चले, और वैसे भी आप कल जाने वाले हैं, तो आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताएंगे, तारा ने बड़े ही प्यार से कहा। तारा की बात सुनकर अमन मुस्कुराने लगा और बोला, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तभी तारा भी मुस्कुराने लगी और करिश्मा जी की ओर देखते हुए अमन के पीछे पीछे जाने लगी। और तारा सोचने लगी कि क्या ऐसा क्या कारण था कि अचानक से अमन को कहीं जाना पड़ रहा है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अमन झूठ बोल रहा है, ये बात तारा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। लेकिन अब वो झूठ क्यों बोल रहा है, इस बात का पता भी तारा को लगाना था। इसीलिए वो आज पूरा दिन अमन के साथ बिताना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो अमन के साथ पूरा दिन रहेगी तो आसानी से इस बात का पता लगा लेगी। और वो ये भी जानती थी कि करिश्मा जी को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अमन कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तारा ने ये जानने का फैसला ले लिया था। वो लोग ऑफिस जाने वाले थे। राधिका के मर्डर के बाद आज चौथे दिन वो लोग ऑफिस जा रहे थे, तो ऑफिस में काफी सारा काम था, वो कंप्लीट करना था। साथ ही साथ आज अमन को विक्रांत रंधावा को ऑफिस की सारी जिम्मेदारी सौंपनी थी और उसके बाद उसे अपनी तपस्या के लिए जाना था। तारा और अमन ऑफिस पहुंच चुके थे। अमन ने विक्रांत रंधावा को कॉल कर लिया था। विक्रांत ने बता दिया था कि वो कल रात घर इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो अपनी एक फ्रेंड के घर पर रुका हुआ था। उसने ये नहीं बताया था कि वो अपनी माँ को छुड़ाकर जंगल गहरे घने जंगल में गुफा में छोड़कर आया था। इसी चक्कर में वो वापस घर नहीं आ पाया था। तभी अमन को भी लगने लगा था कि विक्रांत की अपनी जिंदगी है। वैसे भी वो इस शहर में घूमने फिरने के लिए आया है कुछ दिनों के लिए, तो उसे उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सोचकर अमन ने भी ज्यादा तहकीक नहीं की थी और उसने सीधा विक्रांत को कॉल करके बोल दिया था कि वो ऑफिस में ही उससे मिले, क्योंकि वो तारा ऑफिस जा रहे हैं। जैसे ही विक्रांत ने ये सुना कि तारा भी ऑफिस जा रही है, तो उसका घर जाने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी वो तारा के लिए ही तो ऑफिस आया करता था और तारा तो ऑफिस जा ही रही थी, इसीलिए विक्रांत जल्दी से जंगल की गुफा से निकलकर सीधा ऑफिस में पहुंचने लगा था। वहीं मल्लिका और अमित भी ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे। मल्लिका के जिस्म के जो काले काले निशान पड़े हुए थे वो हल्के तो हो ही गए थे, लेकिन हल्के से कुछ निशान थे जो दिखाई दे रहे थे, इसीलिए आज मजबूरन मल्लिका को शॉर्ट ड्रेस की जगह एक लॉन्ग सूट पहनना पड़ा था, क्योंकि अगर वो शॉर्ट ड्रेस पहनती तो उसके जिस्म के निशान किसी को भी दिखाई दे सकते थे, जो कि उसके लिए सही नहीं था और किसी को भी उस पर शक हो सकता था। तो मल्लिका किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वैसे भी उसे अमन को पाना था। जब तक वो अमन को नहीं पा लेती तब तक उसे अपने आप को संभाल कर रखना ही था।
जल्दी ही तारा और अमन आगे पीछे ऑफिस में पहुंच चुके थे और साथ ही साथ मल्लिका और अमित भी ऑफिस में आगे पीछे पहुंच चुके थे। लेकिन विक्रांत रंधावा कभी तक ऑफिस में नहीं पहुंचा था, क्योंकि अपनी माँ को उसने जिस जंगल में रखा था वो जंगल शहर से काफी दूरी पर था, इसीलिए वो जल्दी वहां से नहीं आ पाया था। अमन जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर गया, उसने राधिका की खाली जगह देखी। उस डेस्क को देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था। वहीं तारा भी अमन के पीछे पीछे ही थी और जैसे ही तारा ने अमन की नज़रों का पीछा किया तो उसे भी एहसास हो गया था कि अमन क्यों परेशान है, और वो भी राधिका की खाली जगह को देखकर परेशान हो उठी थी। अभी वो दोनों नाम आंखों से राधिका की खाली जगह को देख ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से किसी के आने की आहट हुई, और जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए थे। उनके ठीक पीछे राधिका के पिताजी खड़े हुए थे। तारा परी ने राधिका के पिताजी को बिल्कुल ठीक कर दिया था, तो अब वो अपनी उम्र से भी ज्यादा कम और हल्के लग रहे थे। तारा परी ने जैसे ही उन्हें देखा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और वो उनके हालचाल पूछने के लिए उनके करीब चली गई थी। वहीं अमन भी उनके पास चला गया था और फिर उनके पास जाकर बोला, अंकल, आपने ऑफिस ज्वाइन करने का डिसीजन लेकर बहुत ही समझदारी वाला काम किया है। तब राधिका के पिता ने दोनों हाथों से अमन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर यहाँ आ पाया हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मुझे कोई नया जन्म मिल गया हो। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर और ठीक महसूस कर रहा हूँ, और बस मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि ऊपर वाले ने मुझे तब ठीक किया जब मुझे मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर जाकर मेरी बेटी ने मेरे लिए सिफारिश की होगी, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने मुझे ठीक कर दिया और मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। तभी तारा ने राधिका के पिताजी से कहा, अंकल, अब आप आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि आप राधिका के डेस्क पर जाकर काम करें, वहां जाकर बैठें, आपको सारा काम समझा दिया जाएगा। और हाँ, जो चले जाते हैं उनकी कमी तो कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप राधिका का सपना जरूर पूरा करेंगे। राधिका अपने भाई को डॉक्टर बनाना चाहती थी और अब राधिका की जगह आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। तारा की बात सुनकर राधिका के पिता उसे हैरानी से देखने लगे और बोले, बेटा तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्या तुम राधिका की दोस्त थीं? अब तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। वो ये भी नहीं बता सकती थी कि उसने आपकी बेटी का हाथ पकड़कर इस बात को जाना था।